ओम शांति। आज जनवरी मास की 13वीं तारीख है। हाँ, आज कौन सा दिन है तो कहेंगे 13 जनवरी। और आज के दिन कौन सा पर्व मनाते हैं? लोहड़ी। और कल क्या होगा? 14 जनवरी। और 14 जनवरी को क्या होगा? मकर संक्रांति होगा। और ये मकर संक्रांति का जो दिन है, ये किस बात का प्रतीक है? अध्यात्म की ओर उन्नति करने का प्रतीक है। कैसे? तो मकर संक्रांति कहते ही उसको है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरी गोलार्ध या उत्तर की ओर गमन करता है, जिस कारण से उसको कहते हैं उत्तरायण, और पर्व को फिर कह देते हैं उत्तरायणी, है ना? तो उत्तरायण मकर संक्रांति के दिन से आरंभ होता है। वैसे इसके बारे में भी अलग अलग मान्यताएं हैं कि 3 हफ्ते पहले ही उत्तरायण आरंभ हो जाता है 14 जनवरी के, लेकिन पर्व मनाने के हिसाब से उत्तरायण का 14 जनवरी को मनाते हैं। तो सूर्य अर्थात ये प्रकृति संबंधित पर्व है, ये है ना, प्रकृति का एक प्रकृति में घटना घट रही है। हमारा जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल का जो राजा सूर्य है, वो जो घूमता है, उसका जो पथ है 360 डिग्री वाला, हा? जैसे ये है 360 डिग्री बोलेंगे ना, पूरा ऐसे घूमेगा तो, है ना? तो 360 डिग्री पथ में इसको क्या कर दिया उन्होंने, 12 हिस्सों में बांट दिया और एक एक हिस्से को राशि कह दिया। तो डेफिनेटली जब 12 हिस्सों में बांटा और सूर्य मूवमेंट कर रहा है, तो एक हिस्से से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, ऐसे करके पूरा चक्कर लगाएगा। तो हर मास संक्रांति आती है, संक्रांति माना ही स प्लस क्रांति, और क्रांति माना कहते ना फलाना व्यक्ति बहुत क्रांतिकारी है, या फिर हम कहते हैं ना जीवन में बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति आ गई। तो क्रांति का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। या कई बार कहते हैं ना कि वो होता है ना, क्या कहते हैं इसको, मकान बनाते हैं ना हम लोग, तो जो सामने का हिस्सा होता है, तो गवर्नमेंट से पूरी परमिशन लेनी होती है ना, इतना एरिया और ये इतना सड़क का हिस्सा है। और कई बार हम देखते नहीं, सड़क तो बड़ी है ना, इतने हिस्से पे थोड़ा और खींच लेते हैं। तो बोलते हैं प्रतिक्रमण कर लिया, तो उस समय तो हमने कर लिया, बाद में जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने सब कुछ नोटिस किया, अचानक आके आपका सारा तोड़फाड़ कर दिया, क्योंकि तुमने क्या किया है, प्रतिक्रमण किया है, है ना? तो सूर्य जो 12 हिस्से किए गए, माना रेखा डाल दी गई होगी ना, तो उस रेखा को जैसे ही क्रॉस करके दूसरी राशि में जाता है, तो उसको कहते हैं कि संक्रांति। तो ये 12 हिस्सों के 12 नाम दे दिए गए, 12 राशि। और फिर अभी मकर संक्रांति के दिन चूंकि सूर्य मकर राशि वाले में प्रवेश करता है, तो इसका नाम पड़ गया मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति और दूसरा क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है, जैसे अगेन ये हमारी पृथ्वी है और एक बीचों बीच की लाइन, हाँ, भूमध्य रेखा, और एक ऊपर की लाइन और एक नीचे की लाइन। तो सूर्य कभी नीचे की ओर गमन करता है वो जो भूमध्य रेखा है और उससे कभी ऊपर, नीचे माना दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर माना उत्तरी गोलार्ध। तो नीचे की रेखा और ऊपर की रेखा जैसे कि उसके लिए एक लक्ष्मण रेखा है कि नीचे जा जाके यहां तक जाएगा और ऊपर जा जाके यहां तक जाएगा। तो मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर गमन करना आरंभ करता है और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को अधिक मात्रा में मिलने लगता है और दिन की साइज भी बढ़ जाती है, दिन लंबे रातें छोटी। या दूसरे शब्दों में अगर कहें तो अंधकार के ऊपर प्रकाश का साम्राज्य छा जाता है, अंधकार के ऊपर प्रकाश की विजय हो जाती है। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे आध्यात्मिकता से। ये तो प्रकृति का एक घटना है। कहते हैं ये शरीर किससे बना है, प्रकृति के पांच तत्वों से बना है। और ये प्रकृति के पांच तत्व कहां से लाए गए, ये बेहद में जो प्रकृति के पांच तत्व फैले हुए हैं वहां से थोड़े थोड़े उधार लेके ये एक तैयार हुआ शरीर जिसको पिंड कहते हैं। तो ये बेहद की जो प्रकृति है वो भी एक ही पिंड हुआ, वो बेहद में और ये हद में, जिसको वो लोग भक्ति मार्ग में, हमको तो बाबा ने बताया ब्रह्मांड माना जब ब्रह्मलोक है, लेकिन दुनिया में तो इसी को ब्रह्मांड कह देते हैं, है ना। और वो कहते हैं जो ब्रह्मांड में घट रहा है वो पिंड में भी घट रहा है। जो ब्रह्मांड में घटित होता है वो पिंड माना, ये भी तो प्रकृति के पांच ही तत्व है ना, यहां पर भी घटित हो रहा है। तो वो जो बेहद की प्रकृति जिसको भक्ति मार्ग के हिसाब से ब्रह्मांड, हमारे हिसाब से तो ब्रह्मांड परम धाम है ना। तो ये जो बेहद की प्रकृति है विस्तारित, उसमें सूर्य रोशनी प्रदान कर रहा है ना। और उत्तरायण और दक्षिणायन के हिसाब से रातें लंबी और छोटी, ये सब हो रहा है ना। अब हमारे अंदर इस पिंड को कौन प्रकाशित कर रहा है, आत्मा प्रकाशित कर रही है। तो ये जो आत्मा इस पिंड को प्रकाशित कर रही है, क्या इसका भी हिसाब ऐसा उत्तरायण का और दक्षिणायन का होता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में ये भी कहते हैं जो उत्तरायण है वो देवताओं का दिन है और जो दक्षिणायन है वो देवताओं की रात है। और अगर कहा कि उत्तरायण देवताओं का दिन है तो दिन से पहले क्या होता है, मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम कहते हैं, अमृत वेला जिसको कहते हैं, है ना, कि वो समय जहां रात गई है लेकिन अभी सूरज आया नहीं है, संध्या जिसको बोलते हैं ना, तो वो रात गई है लेकिन अभी सूरज नहीं आया है। लेकिन रात पूरी कब गई, जब का सूरज पूरा आया तब नहीं, सूरज के आसमान में दिखने से पहले एक रात के अंधकार से अलग एक आलोक, एक प्रकाश दिखता है, है ना। फिर बाद में सूरज खिला हुआ दिखता है, पहले नहीं दिखता है। तो डेफिनेटली दिन की शुरुआत वहां से होती है, है ना। दिन कहें भी तो दिन की शुरुआत वहां से हुई। तो अब अगर हम अध्यात्म के हिसाब से देखें कि छह मास उत्तरायण होता है तो देवताओं का दिन है, और 6 मास दक्षिणायन होता है तो देवताओं की रात है। तो उस उत्तरायण में पूरे काल में तभी क्यों नहीं मकर संक्रांति मना, बिगिनिंग में क्यों? क्योंकि ये बिगिनिंग माना ही ब्रह्म मुहूर्त का समय है, कि जिस समय में भगवान परम सूर्य, आत्मा को अगर सूर्य कहेंगे तो उसको परम सूर्य कहेंगे ना, तो जैसे हम कहते हैं ना मास्टर ज्ञान सूर्य, यही शब्द यूज करते हैं ना हम लोग, ज्ञान सूर्य है हम मास्टर ज्ञान सूर्य है। तो हम मास्टर ज्ञान सूर्य को जो हम भूल चुके थे कि हम हैं, वो परम सूर्य आके बोध कराता है। और इसीलिए कहते हैं उत्तरायण का समय जो उत्तरायण का समय है वो बोध का समय है, और जो दक्षिणायन का समय है वो प्योरिफिकेशन का समय है। जो भक्ति के नाम पे तप आदि करते रहते हैं तो यही सोचते हैं ना, स्नान करने जाते गंगा में क्या सोचते हैं, पवित्र बनेंगे। वो तो भगवान आके कहता है कि ज्ञान गंगा में स्नान करेंगे तब असल में आत्मा पवित्र होंगी, उससे तो सिर्फ शरीर पवित्र होगा, और अगर वो पानी भी मैला है तो शरीर भी पवित्र नहीं होगा, है ना। तो वो आके हमें बोध कराता है कि तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। तो जब तक उसने बोध नहीं कराया था तो हम इसको ही हम समझ के मैं ये हूं समझ के जीवन जी रहे थे, और उस समय हमें ये भी नहीं पता है कि इसको मैं समझ के मैं जीवन जी रही हूं तो इसको बॉडी कॉन्शियस बोलते, ये भी नहीं पता था। ये जब दोनों को अलग अलग पता चला कि एक आत्मा होती है और एक शरीर होता है, तब कहा कि आत्मा के भान में रहेंगे तो सोल कॉन्शियस, और देह के बॉडी के कॉन्शियस में रहेंगे तो बॉडी कॉन्शियस। तो भगवान ने आके बताया कि तुम मेरे साथ घर में रहते थे और बिल्कुल मेरे जैसे थे, बिल्कुल भी मेरे जैसे थे, अर्थात चमकती हुई ज्योति। लेकिन जब नीचे आए तो क्या हुआ, देह धारण किया, और देह धारण किया जिस घड़ी आपने एंटर किया, आपकी ज्योति की इंटेंसिटी 100% 16 कला, लेकिन अगले ही पल उससे धीरे धीरे कम कम कम, ऐसे करते करते हमने 2 युग बिताए, कम से कम वो इंटेंसिटी भल कम हो रही थी लेकिन थे सोल कॉन्शियस, भले गॉड कॉन्शियस नहीं थे लेकिन सोल कॉन्शियस थे। और उसका प्रमाण क्या, तो भगवान कहते हैं जब शरीर छोड़ते हो तो इच्छा से छोड़ते हो, कि अब ये शरीर पुराना हो गया है, अब मैं जाके नया वस्त्र, नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करूंगा। और इससे वो प्रूफ देता है कि तुम सोल कॉन्शियस रहते हो, यही प्रूफ देता है ना बाबा हमको, कि तुमको ये पता है कि ये 2 चीजें अलग है। कोई प्रैक्टिस नहीं करते हो जैसे अभी प्रैक्टिस कर रहे हम, वहां प्रैक्टिस नहीं कर रहे, पर एक नेचुरल रीति से ये हमें भान होता है कि ये 2 चीजें अलग अलग है, और इसलिए उसके साथ इतनी कोई अटैचमेंट नहीं होती है। और साथ साथ क्योंकि भरपूर आए हुए हैं और संख्या भी तो बहुत कम है, 9 लाख क्या संख्या होती है, पृथ्वी जो इतनी बड़ी आज है वही वाली पृथ्वी रहेगी तो सतयुग में भी, हाँ, जो उसका भूगोल का जो मैप है पूरा, जो क्षेत्रफल है, एरिया के नाम भले बदल जाएंगे पर और जो क्षेत्रफल है पूरी पृथ्वी का, वही पूरी क्षेत्रफल में तो 9 लाख रहेंगे, और अभी कितने रह रहे हैं? डेफिनेटली जो सोर्सेस होंगे, अभी तो यूज करते करते खाली हो गए, लेकिन जब पूरा, बाबा कहते हैं विनाश होगा और सृष्टि एक नया रूप लेगी सतो प्रधान, तो सारे सोर्सेस भरपूर होंगे, हरेक के पास अपनी जरूरत से ज्यादा ही होगा, भले चाहे वो राजा की गिनती में आए, चाहे प्रजा की गिनती में आए, चाहे दास दासी की गिनती में आए, चाहे साहूकार की गिनती में आए, हरेक के पास आवश्यकता से अधिक ही होगा, और इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा तो तब होती है ना कि जब मेरे पास नहीं है, लेकिन हरेक के पास आवश्यकता से भी अधिक होगा। और दूसरा, नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज होने के कारण कंपैरिजन नहीं होगा। हाँ, ये भले पता होगा कि ये राजा की पोजीशन पे और मैं इस पोजीशन पे, परंतु वो कंपैरिजन में फिर कंपटीशन, फिर क्रिटिसिज्म, और उसके आधार से फिर ईर्ष्या, द्वेष, इस जलनी अग्नि में अंदर अंदर जलते रहना, प्लानिंग करना, इसको कैसे गिराना है, इसको कैसे चढ़ाना है, वो सब नहीं होगा, वो सब नहीं होगा वहां पे। लेकिन दो युग पूरे होते होते संख्या भी बढ़ जाएगी, सोर्सेस भी कम होते जाएंगे, है ना? जैसे घर में एक बच्चा होता है तो घर में हम जो कमा के ला रहे हैं या जो कुछ भी सुविधाएं जुटा रहे हैं, वो सारा उस पर फिदा है। और अभी दूसरा बच्चा आ गया तो कम हो गया ना, बंटवारा हो गया ना, तो संख्या भी बढ़ती जाएगी पीछे तो। और वो जो सोल कॉन्शियस वाले स्टेज, बाबा ने कहा क्या हो जाएगी, वहीं खत्म हो जाएगी और बॉडी कॉन्शियस में आ जाएंगे हम। हम क्या आ जाएंगे? ऑलरेडी सतयुग से त्रेता एंड तक हमारी ज्योति, हमारा प्रकाश, आत्मा की प्योरिटी जो 100% से शुरू की थी, धीरे धीरे कम हो ही रही है। फिर आके क्या हो गया, त्रेता के एंड में माना द्वापर में, अभी कम तो हो रही है, लेकिन मैं ज्योति हूं या उसका एहसास कुछ भी नहीं है, या यूं कहें कि ये ज्योति उसके ऊपर पर्दा आ गया, पर्दे के पीछे हो गई ना ज्योति, पर्दे के पीछे चली गई। तो जैसे कहा कि दक्षिणायन में रातें लंबी हो जाती हैं, दिन छोटे, और उत्तरायण में रातें छोटी, दिन बड़े। तो हम बॉडी कॉन्शियस से आ रहे थे तो क्या हो रहा था, जीवन में अंधकार ज्यादा था ना। जैसे जैसे वापस से आगे बढ़ते 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 कलयुग तक आए हैं, अज्ञान का अंधकार घना होता गया। अज्ञानी तो वहीं से बन गए, जैसे फीवर, कितना टेम्परेचर होता है नॉर्मल बॉडी का, हाँ 90, ओके 97 सपोज, लेकिन अगर उससे एक भी बढ़ गया तो क्या बोलेंगे, फीवर के लक्षण आ गए हैं। लेकिन अभी कोई जोरदार फीवर नहीं, लेकिन धीरे 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 वो जब 101, 102, 3, 4 जबरदस्त फीवर है। ऐसे अंधकार तो वहां से शुरू हो गया, लेकिन कलयुग अंत तक आते आते अंधकार एकदम घना हो गया। कौन सा अंधकार? अज्ञान का अंधकार। और फिर जैसे कहा कि लोहड़ी माना ही वो दिन जो
आखिरी लंबी रात है, दक्षिणायन की आखिरी लंबी रात। उसके बाद से रातें छोटी होना शुरू हो जाएगी, दिन बड़े होना शुरू हो जाएंगे। तो जो बाबा कहते हैं ना, मैं कब आता हूं, कलयुग के भी अंत में आता हूं, कि जब अज्ञान का अंधियारा बहुत घना हो जाता है और ऐसे समय पर आकर मैं तुम्हें ज्ञान का प्रकाश देता हूं। तो अभी जीवन में जैसे प्रकाश आया, समझो पहले दिन हम ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में आए, थोड़ा सा नॉलेज मिला, थोड़ा सा बोध हुआ, तो जो अंधकार था वो अभी थोड़ा कम हुआ, थोड़ा सा प्रकाश बढ़ा, यही कहेंगे ना। और बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचना है इसने, तो हाँ पूरा ब्रह्मा बाबा कहां तक पहुंचे, हम क्या कहते हैं, 16 कला तक पहुंचना है, 16 कला जिसको कहते पूनम का चांद बन जाना है। अज्ञानता में तो चांदनी मतलब वो सूर्य जो प्रकाश है पर्दे के भीतर चली गई है, ज्ञान मिला तो पर्दा थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा खुल रहा है अभी। और अभी भगवान के ज्ञान के आधार से जीवन को मोल्ड करके उत्तरायण अभी आरंभ हुआ है, मतलब सूर्य का प्रकाश अभी बढ़ा है, दिन बड़े हुए, लेकिन बढ़ते बढ़ते आएगा ना कि सबसे बड़ा दिन है आज का दिन, ऐसा ही होगा ना, सबसे ज्यादा प्रखर प्रकाश। तो हमें भी बोध को बढ़ाते चलना है, आत्मा के सामने जो पर्दा आ गया है उसको रोज थोड़ा 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 अभ्यास के माध्यम से हटाना है। तभी कहते ना तिल 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 करके हटेगा, तिल तिल करके, कितना छोटा होता है तिल। और फिर तिल की विशेषता क्या बोलते हैं, कि तिल अंदर से सफेद होता है, तिल अंदर से सफेद होता है, बाहर की कवरिंग उसकी काली होती है, और वो कवरिंग जो काली है अगर उसको रगड़ेंगे तो वो भी वाइट हो जाएगी, ऐसे ही बोलते हैं ना। हमारी अवस्था वो आत्मा सूक्ष्म माना तेल समझ लो, और उसके ऊपर ये जो पर्दा अज्ञानता का आ गया है, तो अब इसको रगड़ेंगे। रोज जो ज्ञान मिल रहा है, बाबा की जो रोज की मार्गदर्शना मिल रही है, उसके आधार से इस तिल को, आत्मा के ऊपर जो काली परत है, उसको रगड़ते जाएंगे रगड़ते जाएंगे। तो अंदर तो वो सफेद ही है, तो मुझे तिल को सफेद करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता किसकी है, तिल के ऊपर जो कालापन जो कालापन का पर्दा है उसको हटाने की जरूरत है। और यही कारण है हम जब पहले दिन लेसन करते हैं आत्मा का, तो क्या परिचय मिलता है हमें, क्या गुण है, क्या मेरे ओरिजिनल संस्कार है, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। तुम खुद शक्ति स्वरूप हो, शक्ति क्यों मांग रहे हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, क्यों प्रेम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम खुद ही शांत स्वरूप हो, क्यों अशांति में आ जाते हो। इसीलिए जब जिज्ञासु पहले दिन हमारे पास आता है, और अगर हम उसको ज्ञान देना शुरू करते हैं, लेकिन वो तो अंदर से बहुत बेचैन होता है, और उसको तो किसी ने बोला ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे ना, तो उनकी मेडिटेशन से शांति मिलती है बहुत। तो वो हमारे पास आया तो हमने तो उसको कोर्स देना आरंभ कर दिया। बेचारा थोड़ी देर सुनता आखिर रहा नहीं, बहन जी मुझे ये नहीं चाहिए, मैं तो शांति का अनुभव करने आया। कहता है नहीं कहता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? जो बाबा ने सिखाया, जो हमको बड़ों ने सिखाया, वैसे हम ट्रांसफर करते ना, भाई जी आप तो हो ही ना शांत स्वरूप, आप तो शांत स्वरूप हो ही, आप अपने आप को स्मृति दो, और उसी के लिए पहले हम आपको लेसन दे रहे हैं। तो हम है ही प्रेम स्वरूप, हम है ही पवित्र स्वरूप, हम है ही आनंद स्वरूप। तो फिर वो पतित पावन क्या पतितों को पावन करने आया है? हम तो है ही ना पावन, खुद ही भगवान ने आके बोला, खुद ही उसने बोला ना, तुम हो ही प्रेम स्वरूप। हाँ, विस्मृति भी हुई है और उस विस्मृति के दौरान ये काला पर्दा आ गया है, और उस काले पर्दे के अंदर की वो आत्मा दिख नहीं रही है। अब वो ज्ञान के आधार से आपको विजुअलाइज करना है। और जैसे अभी सुना ना कि आत्मिक दृष्टि का मतलब ये नहीं कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा और कार्य किए, नहीं। आत्मिक दृष्टि का मतलब क्या है? वो आत्मा की ज्योति सामने वाले आत्मा को टच करे। लेकिन ये काले पर्दे के अंदर है तो आत्मा की ज्योति उधर यहां से निकलेगी कब और उसको पहुंचेगी कब? निकलेगी कब और पहुंचेगी कब? तो सारा जो पुरुषार्थ है ना संगम पर, एनलाइटनमेंट बोध हो जाने के बाद जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्हें बोध हुआ, और बोध के बाद क्या करना आरंभ कर दिया? उस बोध का प्रचार प्रसार कि मैंने अपनी ऐसे जीवन बनाई है, ऐसे कर्मयोग में रहकर ही सब कुछ करना है। वो बोध होने के लिए भले तपस्या बैठ के की वर्षों तक, लेकिन जो बोध हुआ तो रहना तो संसार में आ गए ना फिर से प्रचार प्रसार करने, चाहे वो महावीर जैन रहे हो, चाहे वो महात्मा बुद्ध रहे हो। तो सारा जो पुरुषार्थ है वो ये है, मुझे अपने आप को पवित्र नहीं बनाना है, मुझे अपने आप को शांत नहीं बनाना है, मैं तो हूं ही। लेकिन ये अनुभव जिस काले पर्दे के कारण नहीं हो रहा है, उस काले पर्दे को हटाना है, और उसके लिए वो काला पर्दा चढ़ा क्यों? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस वाली जीवन जी मैंने, और इसलिए अब हटेगा तो कैसे हटेगा? बॉडी कॉन्शियस से हटकर सोल कॉन्शियस में जीने का। बॉडी कॉन्शियस वाले जीवन जी माना क्या की मैंने उसमें? क्या किया था हमने बॉडी कॉन्शियस वाले जीवन में? क्या किया था हमने बॉडी कॉन्शियस वाले जीवन में? हमने इच्छाएं पैदा की, दो युग तक हम इच्छा मात्रम अविद्या रहे, लेकिन द्वापर में आके इच्छाएं पैदा की, और उन इच्छाओं की पूर्ति के पीछे लगे रहे, और वो जो इच्छाएं थी वो सारी की सारी इच्छाएं इंद्रियों की तृप्ति से संबंधित थी। कौन सी इच्छाएं थी? इंद्रियों की तृप्ति से संबंधित थी, क्योंकि ये तो भूल ही गए कि आत्मा है, तो मन फिर इंद्रियों रूपी गलियारे से बाहर ही झांक रहा है ना, बाहर ही झांक रहा है ना। तो जिस चीज पर ज्यादा अटेंशन होगा वही पाने की इच्छा होगी ना। तो इंद्रियों से देखा, सुना, खाया, पिया, जितना वो देखते गए सुनते गए उतना ही उसको और पाने की, और इसी ने उस आत्मा के ऊपर ये काला पर्दा खड़ा किया, इसी ने आत्मा के ऊपर काला पर्दा खड़ा किया। सूर्य की उपस्थिति है सौर मंडल में, उसके प्रकाश से समुद्र का पानी बाष्पीकृत हो रहा है, और वही पानी जो सूर्य के प्रकाश उष्मा के कारण बाष्पीकृत हो रहा है, वेपोराइज हो रहा है, भाप बन रही है, वो सूर्य जिसकी किरणें जिस रास्ते से पहुंचकर इसके पास आ रही थी सागर के पास, उसी रास्ते में जाकर वो भाप खड़ी हो गई, उसी रास्ते में जाके खड़ी, सूर्य के कारण से ही वो भाप तैयार हुई है, लेकिन उसी भाप ने उसी रास्ते में बाधा खड़ी जहां से सूर्य की किरणें आकर भाप तैयार कर रही थी। समझ में आ रही बात? तो अब क्या हुआ, रोज थोड़ा थोड़ा वाष्पीकरण होते 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 वर्षा ऋतु के काले काले घटाएं तैयार हो गई, और जब तक वो घटाएं बरस बरस के खत्म नहीं होगी, खुले आसमान का सूर्य नहीं दिखाई देगा। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो काला पर्दा काली घटाएं इसको बरसाना पड़ेगा, इसको बरसाना पड़ेगा। कैसे बरसेंगे? बस ये बर्स के नीचे गिर जाए तो आत्मा ज्योति तो मस्त प्योर शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप शक्ति स्वरूप आनंद स्वरूप उसका अनुभव आरंभ हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश बढ़ाने थोड़ी जाते हम, सूर्य का प्रकाश जो है सो है, काली घटाएं खत्म होने का इंतजार कर रहे होते हैं। ये बरस के खत्म हो तो खुले आसमान में सूर्य के दर्शन हो। तो ये आत्मा के रास्ते पर, जैसे कहा ना, आत्मा इस पिंड में है तो इस पिंड में मूवमेंट हो रही है, इस शरीर में इंद्रियां बाहर झांक झांक कर इच्छाएं क्रिएट कर रही है, और कर्मेंद्रियों से उसको पूर्ण करने में लगे हुए हैं, और यही जाके उसके मार्ग पे काली काली घटाएं खड़ी कर दी, तिल के ऊपर काला। तो इसको रगड़ने का काम करना है, इसको गिराने का काम करना है, उसके लिए ये भट्टी है, उसके लिए ये भट्टी है कि भट्टी में बैठो, अपने आप के साथ अपने को समय दो। बाबा ने मुझे इतना ज्ञान दिया है, ये ज्ञान मेरे प्रैक्टिकल जीवन में कितना आया है, मैं भले ही कितना भी कमेंट्री से अपने आप को कह दूं मैं प्रेम स्वरूप हूं, प्रेम के सागर में डूब गई हूं, मेरे से प्रेम के वाइब्रेशन बाहर निकल रहे हैं, बेशक वो भी एक अनुभव है, लेकिन वो उतनी ही देर का अनुभव है। और जैसे ही वो कमेंट्री के बाद योग से उठे, वो अनुभव वहां और हम कुछ और है। सच्चाई, सच्चाई है या नहीं है? है ना? इसलिए अब काम करना है उस काली घटा पर, मैं जो हूं उसको आधार बनाकर चेकिंग करना है अपनी। मैं हूं तो प्रेम स्वरूप, प्रैक्टिकल कर्म में प्रेम क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? मैं हूं तो शांत स्वरूप, प्रैक्टिकल जीवन की परिस्थितियों में मैं क्यों एकदम से टेंस हो जाती हूं? ये अपने आप से सवाल करने हैं। और ये सवाल करते 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 आपको, क्यों मैं अशांत स्वरूप हो जाती हूं, क्यों मैं नफरत स्वरूप हो जाती हूं, ये अपने आप से डायलॉग करते करते वो जड़ पकड़ में आएगी। अशांति का कारण क्या था? फलाने के साथ नफरत से व्यवहार करने का कारण क्या था? फलाने के साथ असहयोग करने का कारण क्या था? इसलिए कई बार देखो, कुछ दो व्यक्ति के बीच में कुछ ऐसी बात होती है, वो भी चुप, लेकिन दोनों एक दूसरे को अच्छी से नोटिस कर रहे हैं और दोनों अपने अपने रीति से चल रहे हैं। फिर किसी दिन एक बीच में कोई आता है मीडिएटर बन के, बोलो क्यों ऐसा चल रहा है, वो सारा खोलता है। बाहर से तो दिखता है चुप है बिल्कुल, क्यों? बाहर से तो बोलेंगे बहन जी मेरे मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत रिगार्ड है। और जब उसकी बातों को हमने समझा, हमने अपनी बातें बताई, देख लूंगा मैं आपको, अभी तो बोला था रिस्पेक्ट है रिगार्ड है, अभी बोला था मुझे आपके लिए रिस्पेक्ट है रिगार्ड है, आप बड़े हो, और अभी आप कह रहे हो मुझे कि मैं देख लूंगा। तो जब अंदर की चेकिंग करेंगे ना, ईगोवश वहां नहीं स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अंदर जाके मुझे जड़ समझ में आएगी और उस जड़ को उठा के बाबा को दे देना है। यही तो कह रहे ना हम आपको, चार धामों की यात्रा करो, बाबा को पत्र लिखो, इंट्रोस्पेक्शन करो। क्या लिखना क्या है पत्र में? एक प्रश्न ये भी आता है, क्या लिखे बाबा को पत्र में? ये जो आपने मुझे इतना अच्छा चांस दिया, हर प्रकार की जिम्मेवारी से मुक्त स्वयं की चेकिंग की जिम्मेवारी का समय दिया। समय चाहिए ना, नहीं तो मुझे जिम्मेवारियां खींच रही ना, ये करना है वो करना है। आपने मुझे हर प्रकार से निश्चिंत करके सिर्फ एक ही ड्यूटी दी, और इसमें मैंने जब भीतर में झांका, मुझे पता चला ये क्यों बादल बने, क्यों बादल बने? ग्रीष्म ऋतु बाष्पीकरण कैसे हुआ? रोज सूर्य की गर्मी बढ़ रही थी, रोज धीरे धीरे जमा हुआ और जाके भी घर अचानक से तो काली घटा नहीं बनी ना। तो अंदर से भी पीछे जाएंगे, अच्छा ये इंसिडेंट उसके साथ मेरे साथ हुआ था, ये क्यों हुआ था? कौन सी फीलिंग ने मुझे उसके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए कहा था? हो सकता है कि मैंने उसको समझा ये कौन है, ये तो नथू खेरा ऐरा गहरा है, इसका क्या ख्याल करना है, जबकि उसके जिम्मेवारी थी डिपार्टमेंट के हिसाब से ख्याल करना। पर उसके मन में ख्याल आ गया ये कौन, इधर उधर किस खेत की गाजर की मूली है। तो सामने वाले ने भी जब देखा कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं पे कर रहा है, अब सामने वाला क्या करेगा? उसके सामने वाले के भाव को देखकर क्या करेगा? अभी अपने आप को जब पता है कि इसने हमारा कुछ करना ही नहीं है, यहां से हमें मिलना ही नहीं, तो हमें दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा नहीं? तो वो सारी बातें जब बैठक में आते तो आती है नहीं आती है, फिर क्या बोलते? पुरानी बातें भूल जाओ ना, बोलते नहीं, तो उस समय रियलाइज तो किया ना कि हाँ यहां से आरंभ हुई है बात। तो ये है रगड़ना। हमारे अंदर की कमियां ऐसे नहीं निकलेगी। बीमारी तब तक नहीं निकलती है जब तक बीमारी को ठीक तरीके से डायग्नोस करके जो बीमारी है उसी अनुसार ट्रीटमेंट, वरना बीमारी कुछ और है, ट्रीटमेंट कुछ और दिया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार सुनने में आता है फलाने को टीबी थी, डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर तो उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आया, कुछ बोला ही नहीं बोला ही नहीं। फिर फलाने डॉक्टर के पास गए तो उसने बोला, अरे तुम्हारी तो ये टीबी इतने समय से इस स्टेज पे चली गई, तुमने अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया। बोले नहीं हमने तो दिखाया, उसने चेक ठीक से नहीं किया। होता है ना ऐसा। और इस चूंकि चेकिंग ठीक से नहीं हुई तो ट्रीटमेंट भी ठीक नहीं हुआ, तो बीमारी तो अंदर ही अंदर बड़ा रूप ले रही थी। तो हमें क्या करना है, बात है उत्तरायण की, कि दिन ब दिन मेरा प्रकाश बढ़ना चाहिए, माना ही हमारी इच्छाएं। हमने इच्छाओं के वश कार्य किया, कर्म किया, वो सकाम कार्यों ने, कर्मों ने एक काला पर्दा चढ़ा दिया। अब हमें क्या करना है, जो भी कर्म करूं, क्या किया बाबा को हमने, बाबा का बन के, बाबा कहते सब कुछ मुझे सरेंडर कर दो, हम कहते बाबा कर दिया सरेंडर, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, और उसके बाद फिर नहीं 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 इतना तो धन नहीं दे सकता ना मैं, नहीं इतना तो टाइम नहीं दे सकता ना मैं। तो सब कुछ भगवान को समर्पण कर दिया, अर्थात अभी हम निमित्त मात्र है। तो जितना निमित्त भाव बढ़ाएंगे उतना कर्म निष्काम होगा, उतना चित्त निर्मल, मल माना ये काला तो मल ही तो है ना ये, उतना चित्त निर्मल बनेगा और उतना वाणी मधुर बनेगी, इंद्रियां शीतल होगी। तो हमें क्या करना है, निष्काम भाव से कर्म करने पर अटेंशन देना है। कर्म करते समय बॉडी कॉन्शियस वाली जीवन जब बोध नहीं था, हर कर्म के पीछे एक अपेक्षा, ऐसा करने के बाद ये। अब अगर हमें निष्काम कर्म करना है तो फिर मन में आएगा कर्म करूं और उसकी अपेक्षा नहीं, तो फिर मतलब क्या कर्म करने का। देखो कर्म करेंगे फल आना है, डेफिनेटली आना है, परंतु मुझे क्यों निष्काम करना है, ताकि ये परत नहीं चढ़े, ये परत नहीं चढ़े। हम बोलते हैं ना एक दिन में कितने विचार उठते हैं, हम पहला दिन जब कोर्स कराते तो कितने विचारों की बात करते हैं, एक मिनट में कितने विचार उठते बोलते हैं, हजारों में। अब अगर आप सोचेंगे कि मैंने हजारों में इतने विचार किए थे क्या कभी, आप सोच के देखो, तो आपको लगेगा मैंने हजार तो विचार नहीं किए, फिर ये साइंस वाले साइकोलॉजी वाले ऐसे कैसे बोल रहे हैं। हम हजार प्रकार के विचार नहीं करते, पर उसी विचार को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। कोई इच्छा जागृत हुई थी, इसको कैसे पूरा करूं, हाँ ये कर लेती हूँ, हाँ वैसा कर लेती हूँ, कोई अलग अलग प्रकार के विचार नहीं कर रहे हम। इच्छाओं की पूर्ति के लिए येन केन प्रकरण क्या क्या किया जा सकता है वो अंदर में चलता रहता है। और येन केन प्रकरण माना ही आत्मा के निजी संस्कारों के विपरीत जाकर हम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आत्मा के ऊपर पर्दा तो चढ़ेगा ना, चढ़ेगा ना। तो इसलिए निष्काम कर्म करें ताकि ये काला पर्दा हटे। और जब ये काला पर्दा हटेगा ना तो क्या होगा पता है? एक बल्ब है इस कमरे में, सपोज बल्ब के अंदर फिलामेंट है, फिलामेंट कवर किससे है? कांच से है, ठीक है। और बल्ब का कांच बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब ये खिड़की है और बल्ब बिल्कुल ऐसी दिशा में लगा है जहां सामने खिड़की है, और वो खिड़की से बल्ब जलाया समझो जब मैंने, तो बल्ब जल उठा, कांच बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, प्रकाश बाहर आया। और वो क्योंकि प्रकाश का स्वभाव है, ऊर्जा का स्वभाव है गमन करना। अब वो गमन करते करते जो कि खिड़की खुली है तो बाहर भी जा रहा है, जाएगा या नहीं जाएगा? हमारे से जब हम किसी को दृष्टि देते हैं, प्रकाश निकलेगा अगर काली परत चढ़ी है तो? हम क्या कहते हैं? हम चेहरे को कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, या फिर ये कहते हैं चेहरा मन का दर्पण है। और आंखों को क्या कहते हैं? आत्मा की खिड़की है, खिड़की बोलते हैं ना। तो आत्मा ज्योति है, अपने आप में पवित्र ज्योति, सिर्फ काला पर्दा आया है। लेकिन अगर ये काला पर्दा हट जाए तो ये खिड़कियों से वो किरण बाहर दिखेगी या नहीं दिखेगी? और आत्मा जब पवित्र स्वरूप में, उसमें स्थिरता, उसमें शांति, वो सामने वाले को महसूस होगा या नहीं होगा? इसीलिए दादियों के पास हम क्यों जाते हैं दृष्टि लेने के लिए? क्योंकि उन्होंने वो काला पर्दा हटा दिया है। तो उन आंखों की खिड़कियों से वो पवित्र ज्योति गमन करती हुई हमारे पास पहुंचती है, वो शांति के वाइब्रेशन हमें महसूस होते हैं, वो आंखों में चमक दिखती है। क्योंकि अंदर तो ज्योति है और एक खिड़की है ना, काला पर्दा वर्दा कुछ नहीं है, तो वो ज्योति दिखाई पड़ेगी या नहीं? बाहर जो खिड़की के बाहर खड़ा होगा और वो अंदर की ओर झांकेगा तो वो बल्ब दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा उसको? तो अभी तो समय है चलन और चेहरे से भी आगे निकलना है, अंतिम समय करीब आ रहा है। और अंतिम समय तो नजर से निहाल करने की सेवा चलने वाली है, जिसका ही यादगार है देवियों के आगे जाके क्या मांग रहे हैं, सिर्फ पल भर की कृपा दृष्टि मुझ पर, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ पल भर की दृष्टि डाल दो। क्यों? वो देवियां कौन जिन्होंने अपनी आत्मा को वो काले पर्दे से रिक्त कर दिया, हटा दिया, तो बस उनमें से कंटिन्यूअसली वो निकल रहा है। तो जो भी आके झांकेगा उसको वो मिल जाएगा ना। तो कब हम तैयार होंगे? तो जो कहा उत्तरायण, उसमें ऐसा आता है कि भीष्म पितामह ने भी जब वो अर्जुन के बाणों से मृत्युशैया पर, जिस बाण शैया पर पड़ा था, तो सब लोग उतर के आ गए, अपने अपने रथों में थे ना, उतर के आगे की अंतिम दर्शन, क्योंकि लगा कि यह भी गया कि गया, तो अंतिम दर्शन तो कर ले। और अंतिम दर्शन के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी होती है ना फटाफट। तो अंतिम दर्शन तो करने आ गए लेकिन अंतिम संस्कार की अभी तैयारी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उसको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था और उसे ये पता था जब उत्तरायण में कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो मुक्ति को प्राप्त होती है, और अगर दक्षिणायन में शरीर छोड़ती है तो आवागमन के चक्कर में फंसी रहती है। ये उसको ज्ञान था, क्योंकि था तो पंडित न प्रकांड, तो ये ज्ञान भी था और इच्छा मृत्यु का वरदान भी था। तो उसने कहा उत्तरायण आने दो, क्योंकि जब वो ऐसे दसवें दिन गिरा था तो वो दक्षिणायन का काल चल रहा था, और इस ज्ञान के आधार से वो चाहता था कि मैं अभी शरीर नहीं छोड़ू, उत्तरायण में छोड़ू। क्या सचमुच वो कैलेंडर वाला उत्तरायण की बात है? ये नहीं, ये आत्मा के उत्तरायण और दक्षिणायन की बात है कि वो पर्दा कितना हटा है। जितना जितना ज्यादा हटेगा उतना उतना उत्तरायण की ओर बढ़ रहे हैं, और अगर नहीं हटा है तो दक्षिणायन में है, और ऐसे में अगर शरीर छोड़ा अंतमति सो गति, वो तो बाबा ने हमको बता ही दिया है ना हमको अंतमति सो गति। तो काली काली घटाएं माना क्या? वो अतीत की बातें याद आ रही है, वो आने वाले समय की भविष्य की चिंता और डर से हमेशा भरे हुए हैं। बाबा जो मुझे इतना मिला है, जिसने मेरे जीवन की पूरी जिम्मेवारी उठाई है, जिसने तीनों लोक और तीनों कालों का दर्शन मुझे मेरे सामने रख दिया है, जीवन की सच्चाइयां खोल के रख दी है, अब किस बात का डर? और क्यों अतीत को पाल पाल के रखा है मैंने? जो कुछ भी हुआ है, जो कल भी हमने सुना ना पॉइंट, निर्विकारी बनना है, तो बिंदु बाबा ने पेपर का समय क्या दिया? पेपर आउट है, टाइम नहीं पता है बस। वहां टाइम पता होता है, पेपर आउट नहीं होता है। तो वो जो टाइम नहीं पता है, वो पता नहीं कौन सी घड़ी मेरे सामने पेपर होगा पल भर का, और पल भर के पेपर में पास फेल किस आधार से रहेंगे? क्या मैं अपनी उस बिंदु रूप में, बिंदु बाबा में मगन थी, या वही अतीत और वो फ्यूचर और वर्तमान में जो परिस्थितियां वही चिंतन कर रही थी? एक सेकेंड के अंदर जो सारी बातें उसको फुल स्टॉप, और फिर मैं अपने आप को बिंदु और उस बिंदु में मर्ज, और उस घड़ी मेरे प्राण निकले, ये होगा उत्तरायण, ये होगा उत्तरायण। लेकिन अगर वो जो परिस्थिति संकल्प रूपी बादलों को स्टॉप ही नहीं कर पा रही हूं, पर्दा हट ही नहीं रहा है, तो अपने आप को बिंदु क्या देखूंगी और उस बिंदु के साथ क्या कनेक्ट होंगी मैं? तो दक्षिणायन में चले गए हम, शरीर किस में छोड़ दिया? दक्षिणायन में छोड़ दिया। तो तिल तिल करके इसकी ज्योति अधिक अधिक, अर्थात तो पर्दा हटे तो ज्यादा दिखाई दे। इसलिए गीता के अंदर आता है उत्तरायण में अग्नि, उत्तरायण पथ है ना, तो अग्नि देवता, फिर आता है ज्योति, फिर ज्योति के बाद आता है दिन, दिन के बाद आता है शुक्ल पक्ष, उसके बाद आता है उत्तरायण, ऐसे बढ़ते हैं। और उसका अर्थ क्या? ये तो प्रतीक है ना, ये तो प्रतीक। अग्नि माना क्या? अब जब अग्नि जलाओ तो लपटें फैलती हैं। तो जैसे ही बाबा के ज्ञान में आते हैं और योग करने बैठते हैं, तो ये इच्छाएं रूपी लपटें इधर से उधर से थॉट आते हैं, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई इधर से। अग्नि माना ही जिसमें लपटे, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं, इधर से उधर से। लेकिन चूंकि बाबा ने मेथड दी है कि ऐसा होगा, लेकिन आपको अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, तो हम बढ़ते बढ़ते फिर उस वो ज्योति माना जैसे दिया जलाते हैं ना, तो ज्योति की लपट ऊपर होती है, माना अनेक लपटों से एक लपट तक पहुंचे। होता यही होता है ना, योग में बैठते तो क्या हो रहा होता है, इधर उधर के थॉट, ये इधर उधर की बातें आ रही है, लेकिन अपने मुझे उत्तरायण की ओर बढ़ना है, मुझे सोल कॉन्शियस की ओर बढ़ना है, ये दृढ़ता लेकर बैठी हूं, तो फिर वो अनेक लपटें शांत हो जाती है, एक लपट रह जाती है। और उस एक लपट में भी फिर कहा दिन, अग्नि ज्योति फिर दिन। दिन माना क्या, सूरज निकल आया ना, कोई लपट दिख रही है क्या, बस सर्वत्र प्रकाश फैल गया है, सर्वत्र प्रकाश फैल गया है, वही तो अनुभूति करनी है योग में। और क्या करना है कि बस एक प्रकाशमान स्थिति तक पहुंच गई हूं, मेरे से बस चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। और वो लपटों के रूप में थोड़ी होता है प्रकाश, लपटों के रूप में नहीं होता है कभी भी प्रकाश। और फिर उसमें दिन के बाद कहा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष माना क्या, चंद्रमा धीरे धीरे रोशनी बढ़ाता जा रहा है, ऐसे ही। और चंद्रमा और दिन में क्या अंतर हुआ, दिन की गर्मी में प्रकाश में फिर भी थोड़ा ताप महसूस होता है, लेकिन चंद्रमा की रोशनी में शीतलता। तो वो सिर्फ मैं प्रकाश का अनुभव नहीं करूं, लेकिन शीतलता का भी अनुभव करूं। जब वो अंदर शीतलता रियल में अनुभव करूंगी, तब योग से उठकर वो शीतलता वाले भी व्यवहार होगी, वरना योग में प्रेम स्वरूप हूं, योग से उठकर अग्नि स्वरूप हूं। होता है नहीं होता है। तो शुक्ल पक्ष धीरे धीरे शीतलता भी बढ़े, और शीतलता बढ़े माना जो कहा प्रैक्टिकल में इंद्रियां भी शीतल होते जाए। सामने वाला कितना ही हंगामा खड़े, सामने आई हुई परिस्थिति कितनी ही भयावह है, लेकिन मैं शांत और शीतल रहकर उसको टैकल करूं। फिर उसमें कहा शुक्ल पक्ष। क्यों शुक्ल पक्ष, सीधा शुक्ल पक्ष धीरे धीरे बढ़ता है ना, फिर जाके चांदनी पूर्णिमा की आती है। तो ये धीरे धीरे अभ्यास, शीतलता का भी जो अमाउंट है धीरे 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 बढ़ेगा, और तब जाके पूर्णिमा का चांद माना परफेक्शन आएगी, और उस घड़ी शरीर छोड़ा तो क्या होगा, जीवन मुक्ति। पहले मुक्ति और फिर जीवन मुक्ति। तो कल हम सभी मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं, वो सूर्य प्रकृति का अंदर एक सूर्य, लेकिन उसके ऊपर काली घटाएं हैं, उसको हटाने का काम तिल खाएंगे ना सब लोग, तो याद करना मुझे तिल तिल करके इस पर्दे को हटाना है, अपनी रोशनी को बढ़ाना है। और बाबा जो चाहते हैं कि बाप समान बन जाए, अभी ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे हैं देखो, सिर्फ और सिर्फ सेवा का पाठ है उनका, अपना पुरुषार्थ उनका नहीं, वो तो सोलह कला चंद्रमा जैसी स्थिति बना ली है, सिर्फ और सिर्फ चूंकि अब वहां पे कोई काली लेयर नहीं है, वो पर्दा नहीं है, कुछ नहीं है, तो निरंतर उसमें से प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो बाप समान बनना है ना जनवरी मास में, तो हमारे से भी वो निरंतर प्रवाहित होता रहे। लेकिन बल्ब के ऊपर अगर वो कांच है ना काला काला होगा तो बस ये भट्टी में यही सफाई करनी थी। बाहरी सफाई तो बहुत, अब अंदर की भी सफाई हमें करना है, तब जाके हमें बाहर की सफाई वाला भी सत्युग मिलने वाला है. नहीं तो जब द्वापर में आएंगे तो बाहर थोड़ी बहुत सफाई तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी ना उसकी. हाँ, तो ये भट्टी अभी भी आपके पास समय है. भीतर इंट्रोस्पेक्शन करें, बहुत कुछ मिलेगा ज्ञान के आधार से. जैसे कहा ना, मैं हूं तो प्रेम स्वरूप, पर फला फला के व्यवहार में मैं प्रेम स्वरूप तो होती नहीं हूं. तो दिखेगा ना, दिखेगा. वो सब बाबा को दान का महत्व है ना. मकर संक्रांति पे दान का भी महत्व है. ये गठड़ी उठा के बाबा को दान करके जाता, जो जो महसूस होगी वो गठड़ी भर के बाबा को दे देगा. तो फिर सच्चे अर्थों में हमारी मकर संक्रांति होगी. और जितनी हमारी ये गठड़ी हम बाबा को दे देंगे, उतनी हमारी आत्मा हल्की हो जाएगी, उतनी उड़ती कला में. तो पतंग उड़ाओगे ना तो देखना, उड़ती आत्मा की कला ऊपर जाए. और पतंग ऊपर उड़ती कला में जाए उसके लिए जरूरी है पतंग अपने को सौंप दे अपने उड़ाने वाले को. अगर अपने आप को नहीं सौंपती, वो चाहती मैं तो डब्बे में ही बैठी रहूंगी जिस पैकिंग में लाया गया है, इसके हाथ में सौंपूंगी तो ये मेरे को पहले गड्ढा करेगा, धागा बांधेगा, वो चुभन होगी, सुई लगेगी, तो फिर पतंग धरा छोड़ के ऊपर नहीं उड़ सकती है. तो बाबा को समर्पण. गड्ढा करे वो तो करने दो, क्योंकि गड्ढा इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां धागा बांधेगा तभी तो ऊपर लेके जाएगा, तभी तो उड़ती कला में जाऊंगी. और उड़ती कला में जाने के बाद भी और क्या ध्यान रखना है, जब मैं उड़ती कला में जाऊंगी तो विस्तार इतना दिखाई पड़ेगा, बेहद का मेरा दृष्टिकोण बनेगा. ये मेरा संसार वसुधैव कुटुंबकम की भावना जगेगी. अभी तो हद में है ना. आजकल तो वो पतंग के साथ क्या हो रहा है, मजा ले रहे एक दूसरे को काटने का. पर हमें वो नहीं करना है. काटने वाले आएंगे बहुत, लेकिन हमें साइड हो जाना है क्योंकि बहुत बड़ा आसमान है. साइड होने की बहुत मार्जिन है. साइड हो जाएंगे अर्थात सामने वाला कंपटीशन करके मुझे गिराना चाहता है, कंपेयर करके, ईर्ष्या की अग्नि में खुद भी जल रहा है, लोगों तक पता नहीं क्या क्या बातें पहुंचा रहा है. मुझे उस फीलिंग से अपने आप को फ्री रखना है. बाबा कहते हैं ना, फ्लू आ जाता है फीलिंग का. तो जब ऐसी अवस्था हमारी बने तब हम बाप समान बनेंगे. तो भट्टी में ये सब आपको करके जाना है. जब जाएं तो बिल्कुल हल्के होकर जाएं, जब जाएं तो जैसे आए थे वैसे ही नहीं, रोशनी जितनी थी उससे अधिक. हम ये नहीं कह रहे कि इस भट्टी से पूरे ही 16 कला बन जाएंगे, लेकिन जितनी पहले थी उससे थोड़ा ज्यादा चमक बढ़े. कि इन खिड़कियों से जब कोई झांके तो सामने वाले को वो शीतल प्रकाश अनुभव हो, वो शांति का अनुभव हो. दृष्टि से सेवा करने की आरंभ अभी करेंगे तब वक्त पे अपने आप होती रहेगी, है ना. तभी हमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं. हमको ये भी सोचना है कि ये दुखी है इसको सुख मिल जाए. नहीं, मैं हूं प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, वही जा रहा है उधर आराम से. मुझे सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिंदु स्थिति बनाना है ना. मैं तो सोच उठाया तो बिंदु स्थिति कहां हुई मेरी. सोच भी नहीं उठाना, मैं बाबा की और बाबा मेरा, इस अनुभूति में सिर्फ खो जाना, वो स्थिति में हमें पहुंचना है. तो यहां से इस भट्टी में अवश्य इतनी तो गठड़ी डाल के जाना बाबा के पास कि पहले से रोशनी अब ज्यादा हो गई है, पहले से हल्कापन अब ज्यादा आ गया है, पहले से ज्ञान गंगा में डुबकी अब ज्यादा लगाएंगे, ज्यादा अपने आप की चेकिंग करेंगे और बाबा हम आप जैसे बनकर ही रहेंगे। ओम शांति।